اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد. جزاك الله سراج بھائی اینڈ جزاک اللہ ٹو دا مینجمنٹ آف ہادی مسلح فار گونگ می دس اپرچونیٹی ٹو ایکسپریس مائی سیلف اور ٹو شیئر سم امپارٹنٹ نالج اباؤٹ ہیلتھ ٹپس اینڈ ڈائٹ ود ریسپیکٹڈ برادرس اینڈ سسٹرس اینڈ اوور یوتھ. ڈو وی ہیو اینی پرسن ہو کین ناٹ انڈرسٹینڈ اردو؟ نو. اوکے. So basically my presentation would be a mix of English and Urdu, inshallah. Diet is such a huge subject that millions of books have been written on this subject. So is puri samajh lijiye ki diet ke hawale se, diet ke groups kya hote hain, diets mein health ke hawale se kya tips hain, isko summarize karna ek 40 minutes ki presentation mein, jaise Urdu mein kehte hain ki darya ko kooze mein band karne ke mutaradif tha. لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جو بھی بیسک چیزیں انشاءاللہ وی وڈ ٹرائی ٹو کور دوز. اینڈ کوشش میری یہ ہوگی انشاءاللہ آئی وڈ ٹرائی مائی بیسٹ ٹو پریزنٹ تھنگس ان دا موسٹ سمپل اینڈ ایزیسٹ فارمیٹ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک اے ٹپیکل میڈیکل لیکچر اور اینی تھنگ لائک دیٹ. اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی انٹریکٹیو ڈسکشن. انشاءاللہ کوشش کریں گے آخری 5 to 10 منٹس میں ہم جو ہیں وہ سوال و جواب جو ہے کر سکیں. اور وٹ ایور کمس ٹو یور مائنڈ یو کوڈ آلویز نوٹ دیٹ, اس کو ذہن میں رکھیے اور ان شاء اللہ سیشن جیسے ہی ختم ہوتا ہے ان شاء اللہ پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا. اوکے. سو اسٹارٹنگ فرام دا ویری فسٹ لائن, ایز یو کوڈ سی دیٹ اٹس اے فیمس ٹریڈیشن آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیٹ گاڈ ہیز اے رائٹ over your over you and your body has a right over you. Yani jis tarah Allah taala ke hamare upar haq hai ek ki usne hame different body parts diye, organs diye, glands diye, unka hum sahi use kare, unka misuse na kare, bilkul usi tarah body ka bhi hamare upar ek haq hai ki usko hum jaiz halal aur sahi khana ya ghiza jise aap kehte hain wo faraham kare. وہ کس طرح کی ہو سکتی ہے, کیا ہوتی ہے, اس پریزنٹیشن میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے شروع کرتے ہیں. آئی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود اے ویری انٹرسٹنگ فینومینا اینڈ آئی ایم شیور یو آل مسٹ بی ریئلی انٹرسٹڈ ٹو سی دیٹ ایز ویل. وی آر واٹ وی ایٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ ہیں جو ہم کھاتے ہیں. اس بات کو کیسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں جو کچھ بھی کھا رہا ہوں میں وہ ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے, بہت سمپل, وٹ ایور آئی ڈو, ہاؤ ایور آئی فیل, میں جس طرح محسوس کرتا ہوں, جس طرح کا میرے ایکشنز ہوتے ہیں, جس طرح کا میرا بیہیویئر ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنی ورک پلیس پہ, اس میں ڈائٹ کا, فوڈ کا بہت کروشل رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے. آئی وڈ لائک you to all focus on this very important slide. As you could see, food has a very crucial link with behavior. We are what we eat. Agar aap dekhiye right side pe, you could see you know, 3 or 4 wolves eating some raw meat, right? Wolf kya hai? Wolf basically ek beast hai, right? Wolf is not a peace loving animal. Wolf is a beast jisko Urdu mein hum darinda kehte hain. لیکن آن دا ویری لیفٹ سائڈ اف یو سی وی ہیو گاٹ اے گوٹ, اور گوٹ جو ہے بیسیکلی اٹ از ایٹنگ گراس. اس سلائڈ کا کیا مطلب ہے؟ ویری انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیے تو جتنے بھی بیسٹس ہیں, لڑنے لڑانے والے, جن کی فطرت, جن کو آپ اردو میں درندہ کہتے ہیں, دے آر آل گوشت خور, ایکسکلوسیولی گوشت خور, یعنی وہ صرف گوشت کھاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, آپ خدا نہ خواستہ اس بات کو انسانوں میں مت لے لیجیے گا, میں اس طرف بھی آؤں گا. گوشت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ را میٹ کھا رہے ہیں, اور ان کی فطرت کیا ہے؟ چیرنا, پھاڑنا, کھا لینا, ظلم کرنا بیسیکلی. اور دوسری طرف اگر آپ گوٹ کو دیکھیں, شیپ کو لے لیں یا کاؤ کو لے لیں, جو کیٹل ہے وہ انسانوں کے کام آتی ہے. دے آر ویری پیس لونگ اینیملس. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مطلب ایکسیپٹ ریئر کیسز میں, کہ آپ ان ریئر کیسز کو اگر ہٹا لیجیے کہ کسی کاؤ نے جو ہے وہ کسی انسان کی جان لے لی ہو, کسی بکری نے کسی انسان کی جان لے لی ہو, ये फूड और बिहेवियर को ये स्लाइड बहुत अच्छी तरह डिपिक्ट कर रही है कि हम जो खा रहे हैं उसका कितना अच्छा असर हो सकता है या कितना बुरा असर हो सकता है हमारी फितरत पर। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि अल्लाह ताला ने जितने भी दरिंदे हैं उनको गोश्तखोर बनाया, और जितने भी ये जो काम आने वाले मदद करने वाले जानवर हैं हमारे इंसानों के काम आने वाले उनको बेसिकली वेजिटेरियन बनाया। लेकिन ये प्रेजेंटेशन हरगिज जो है मैं आपको वेजिटेरियन नहीं बनाने जा रहा है, इसलिए आप खुद देखिएगा कि बैलेंस क्या चीज़ है और कौन सा गोश्त इंपॉर्टेंट है हमारे। ओके, नाउ लाइक टू कम टू अ वेरी अनदर इंटरेस्टिंग स्लाइड। ये जो हमारा मूड होता है, जो हम कहते हैं कि आज हम ऑफिस से वापस आए या घर में जो है फ़र्ज कीजिए कि इंसान का बहुत गुस्सा है, बच्चों पे, वाइफ पे गुस्सा उतार रहा है या अपने दोस्तों पे गुस्सा उतार रहा है या किस टेंशन में नींद नहीं आ रही है और फैमिली इशूज़ हैं, वर्क इशूज़ हैं, वट एवर, गुस्से में है, डिप्रेशन में है, एनजाइटी का शिकार है, जिसको आम कॉमन लफ्ज़ों में आप कहते हैं कि मैं बहुत टेंशन में हूँ आज, मुझे बहुत टेंशन है फला चीज़ की, और में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको टेंशन ना हुई हो, किसी को कम किसी को ज़्यादा। हमारी फूड जो है, साइंटिफिक रिसर्च और इंटरनेशनल पब्लिश्ड स्टडीज हैव रिवील्ड दैट सर्टेन सब्सटेंसेस इन अवर डाइट हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन अवर मूड। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आप मूड एलिवेटर्स की बात करें, फूड को हम दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, मूड एलिवेटर्स, वो खाना पीना जो हमारे मूड को एलिवेट करता है, हमें अच्छा, वी फील गुड After eating or drinking those things, right? उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? Vegetables and fruits, beans, seeds, nuts, whole grains, fish, skim dairy milk या yogurt, any vegetables or fruits. ये वो सारी चीज़ें हैं ग्रुप नंबर वन में जिसको आप मूड एलिवेटर कहते हैं, जिससे आपका मूड डिप्रेस नहीं होता, यू फील गुड। लेकिन अगर आप इसके साथ जो दूसरा कॉलम है उसमें आप देखिए, उस पर मूड डिप्रेसर्स यानी कैफीन जो कॉफ़ी और चाय में ज़्यादा होती है, अल्कोहल ऑफ कोर्स, टोबैको, शुगर, फैटी मील, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड किया हुआ मील जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच फ्राइज, या आप मिसाल ले लीजिए बर्गर्स की, बन कबाब, इस तरह की चीज़ें जो हैं, वाइट फ्लोर, ये जो वाइट आटा जो होता है वो भी जो है वो हमारे मूड को डिप्रेस करता है। तो आज के बाद आप लोगों के बाद मालूम होना चाहिए कि फूड जो है दो तरह की है, जिसमें कुछ फूड डिप्रेसर्स हैं और कुछ फूड मूड डिप्रेसर्स हैं, कुछ मूड एलिवेटर्स हैं। अच्छा, अब हमने ये तो देख लिया कि फूड हैज़ अ वेरी वाइटल कनेक्शन विद मूड, वी आर व्हाट वी ईट, राइट। फूड बेसिकली होती क्या है, डाइट किस तरह की होनी चाहिए, एक आइडियल डाइट क्या है, अब हम उस तरफ जाएंगे। हम जो भी खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, वट एवर, उसमें दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। उन तमाम खाने वाली गज़ा को या अशिया को हम दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड नंबर टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फूड हमारी न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। We cannot survive unless we eat food, unless we drink water. तो food को हम दो तरह के groups में divide कर सकते हैं। अब मैं mood की बात नहीं कर रहा, अब हम general food की बात कर रहे हैं, अपनी ग़िज़ा की बात कर रहे हैं। Macro का मतलब होता है बड़ा और micro का मतलब होता है छोटा, right? तो macro nutrients जो हैं food में, हर तरह के food में दोनों nutrients present होते हैं, micro भी और macro भी। Macro nutrients कौन कौन से होते हैं, आप सबने नाम सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट्स जिसको उर्दू में निशास्ता बोलते हैं, प्रोटीन जिसको उर्दू में लहमियात बोलते हैं, और इसी तरह फैट जो है वो चर्बी, बेसिकली चिकनाई। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। फूड का मेजर पोर्शन जो है, बड़ा हिस्सा, वो इन तीन न्यूट्रिएंट्स का बना हुआ है, इन तीन तरह के न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं जो फूड में बहुत कम मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो एसेंशियल हैं टू परफॉर्म अवर डेली बॉडी फंक्शंस। इफ़ वी ब्रीथ, इफ़ वी रिप्रोड्यूस, इफ़ वी एक्सक्रीट, इफ़ वी मूव, जो भी हमारे लिविंग फंक्शंस हैं डेली लाइफ के, उसके लिए मस्ट है कि हम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों लें। अगर इनमें से कोई भी डिफिशेंट है तो हमारी बॉडी सफ़र करेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन शामिल हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो आज हमारा मौजू नहीं है, हमारे पास ना इतना टाइम है और ना हमारी जो है इतना इजाज़त देगी, क्योंकि मुझे ये भी जहन में कि सब जो यहाँ पर खाली पेट बैठे हुए हैं और जो है वो जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो भी इत्तेफाक से रज़ा के हवाले से ही है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा। वाइटमिन्स के अलावा मिनरल्स, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और सल्फ़र और जो दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, ये भी गज़ा में प्रेजेंट होते हैं, कुछ गज़ाओं में कम, कुछ गज़ाओं में ज़्यादा। ये बात तय हो गई स्लाइड में दैट देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ फूड, बेसिकली फूड हैज़ टू मेजर ग्रुप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नंबर वन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स शामिल होते हैं, और नंबर टू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स विच कंसिस्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम बात करेंगे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिस तरह गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत होती है, एवरी कार और एवरी व्हीकल नीड्स गैस टू मूव राइट टू वर्क, हमारी बॉडी उस वक्त तक, हमारा ब्रेन स्पेशली काम नहीं कर सकता जब तक इसे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी का पेट्रोल है या गैस है, फ्यूल है, और ना सिर्फ फ्यूल है बल्कि हमारी रिस्पायरेशन यानी जो हम सांस ले रहे हैं, रिप्रोडक्शन जो हम अफजाइश कर रहे हैं, हमारी मोबिलिटी जो हम मूव कर रहे हैं, हमारी ब्लड सर्कुलेशन और हमारी जो नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन है उसके लिए, हमारी नर्व जिस तरह काम कर रही है, हमारा ब्रेन जिस तरह काम कर रहा है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जिस तरह काम कर रही है, उसके लिए मस्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सफिशिएंट क्वांटिटीज में प्रेजेंट हों। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना, सिंपल सिंपल चीज़ें आप लोगों ने याद रखी, मोटी मोटी चीज़ें से आप कहते हैं, तीन तरह के होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तीन तरह के होते हैं। नंबर वन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली ब्रेड्स, लेग्यूम्स, राइस, पास्ता, स्टार्च वेजिटेबल्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की कुछ सोर्सेज हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को आप अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, कि जिनको अगर हम थोड़ा ज़्यादा एक्सेस में भी खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो थोड़े से ख़तरनाक हैं, बल्कि थोड़े ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये जो शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर जिसको सिंथेटिक शुगर आप कहते हैं, वो मिसाल है सिंपल कार्बोहाइड्रेट की। ये जो हम केक खा रहे हैं, ये जो हम पेस्ट्रीज खा रहे हैं, जो हम डोनट्स खा रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं। इसमें जो शुगर होती है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल शुगर यूज़ होती है, सिंथेटिक शुगर यूज़ होती है, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है। कार्बोहाइड्रेट की एक तीसरी फॉर्म भी होती है जिसको आप कहते हैं फाइबर। फाइबर एक बहुत अच्छी कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। ये जो जब आप फ्रूट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल कीनू, अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर बल्क होता है, उसके अगर जूस को आप निकाल भी दें तो अंदर बल्क रह जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइबर। फाइबर इसी तरह होल व्हीट ब्रेड अगर आप ले लें उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की टाइप है जो ज़रूरी है एनर्जी के लिए नहीं, लेकिन हमारी डाइजेशन के लिए। अगर हमारे फूड में फाइबर नहीं होगा तो हम लोग सब जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी सबको। वी कैन नॉट एक्सक्रीट दी वेस्ट मटीरियल, हम उसको एक्सक्रीट नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ ये फाइबर ही होता है जो हमें फुलनेस का एहसास देता है। इस बहुत सारे जो मोटे लोग होते हैं उनको डॉक्टर्स जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप फाइबर वाली गज़ा ज़्यादा खाइए ताकि आपको भूख कम लगे, और आप कम खाएं तो एज अ रिजल्ट आप वेट लूज़ करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की तीन एग्जाम्पल्स हो गई, तीन टाइप्स हो गई, सिंपल जो ख़तरनाक वाले हैं, कॉम्प्लेक्स जो अच्छे वाले हैं, और फाइबर जो हमारी बॉडी की डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अब एक छोटा सा मैं आपको आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेजर इंटरनेशनल स्टडीज़ जो हैं वो दे हैव रिवील्ड के आर्टिफिशियल या सिंथेटिक शुगर जो होती है, अगर आप उसको एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, फॉलोइंग हेल्थ डिसऑर्डर्स और डिजीजेज। नंबर वन कैंसर रिस्क इंक्रीज होता है। नंबर टू डायबिटीज़ का रिस्क आप सबको मालूम है। मीठा खाने से शुगर नहीं होती, लेकिन मीठा ज़्यादा खाना जो है वो आपका जो पेनक्रियाज है उस पर जो इंसुलिन निकल रहा है उसकी एक्टिविटी को मुतासर कर सकता है, जिसकी वजह से यू आर प्रोन टू यू नो डेवलप शुगर और डायबिटीज़। ओबेसिटी, ओबेसिटी कहते हैं बेसिकली एबनॉर्मली हाई वेट को, यानी आपका जो वेट है वो नॉर्मल जो लिमिट है उससे आपकी हाइट के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो यू आर ओबीस। ये भी एक बीमारी है, और आपने कैनेडा, अमेरिका, खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका में देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। तो वो बेसिकली वो सिर्फ मोटे ही नहीं होते, वो बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है, और वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ प्री मैच्योर या अर्ली डेथ्स मोटापा जो है। फोर आप देखें आर्थराइटस, ज्वाइंट डिजीज जिसे आप कहते हैं, उसका रिस्क भी इंक्रीज़ करती है सिंथेटिक शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल। हार्ट डिजीज को भी ऑब्वियसली इंक्रीज करती है, और जो लोग ज़्यादा शुगर खाते हैं उनमें इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यही वजह है कि आपने शायद देखा हो कि जो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको उनके ज़ख्म जो है बहुत देर में बढ़ते हैं और उनको इन्फेक्शन जो हैं बहुत ज़्यादा आराम से हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो अब याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल शुगर खाना जो है वो आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, ज़्यादा खाना। व्हाट्स गोइंग बैक, आई जस्ट नीड टू गो फॉरवर्ड, यप, नेक्स्ट, यस, नो, प्रीवियस, बैक, यस, दैट्स इट, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, अब हमने ये फैसला कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली दे आर ऑफ टू टाइप्स, राइट, एक खतरनाक वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं और एक अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आप लोगों ने ये याद रखना, आपने टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना कि कॉम्प्लेक्स क्या है और ये क्या है। अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट जो आपको खाने चाहिए वो कौन कौन से हैं? फ्रूट्स, भाई फ्रूट भी तो मीठे हैं, उसमें भी ग्लूकोज है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, उसमें भी चीनी है, लेकिन कुदरती चीनी है, अल्लाह ताला की बनाई हुई, मशीन की बनाई हुई चीनी नहीं है उसमें। तो फ्रूट्स, चाहे वो ड्राइड हो या फ्रेश हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। इसी तरह वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। सीरियल्स, अगर कोई साहब ब्रेकफास्ट सीरियल से कर रहे हैं, इट्स एन एक्सेलेंट थिंग टू डू। और पास्ता, नूडल्स, होल व्हीट ब्रेड जो है, शहद बेहतरीन, बीन्स, लेग्यूम जितना ज़्यादा खा सकते हैं खाइए। यहाँ एक बात का ख्याल रहे बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ ये बेसिकली अदरवाइज नॉर्मल लोगों के लिए है। ये अगर कोई किसी को डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या जो छोटे बच्चे हैं जो डेवलपिंग फेज़ में, उनके लिए ये प्रेजेंटेशन की सारी चीज़ें सही नहीं होंगी, एक आम स्टैंडर्ड एडल्ट के लिए प्रेजेंटेशन है। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी से कह रहा हूँ कि आप जो है वो 2.5% मिल्क नहीं पीजिए, तो ये मेरा मुखातिब है आम एडल्ट लोग, मेरे सराज भाई की एज के लोग हैं, आप लोग जो हैं उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये छोटे लड़के जो डेवलपिंग फेज़ में है अभी, उनको मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप जो है दूध से परहेज शुरू कर दें या आप चीनी कम खाएँ जो अभी डेवलपिंग फेज में, तो इस बात का ख्याल रहे। इसी तरह डायबिटिक जो लोग हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दे हैव टू डिस्कस ऑल द थिंग्स विद देयर डॉक्टर बिफोर प्रैक्टिसिंग एनी ऑफ दीज टिप्स, राइट, दैट्स अंडरस्टूड। खतरनाक चीज़ नंबर वन, मिठाई, नहीं छोड़ सकते खाना, एक्सेप्ट। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रॉब्लम का बताना नहीं है बल्कि सोल्यूशन भी कोशिश इंशाल्लाह करेंगे कि आपको पहुँचाए प्रॉब्लम का। मिठाई खाना नहीं छोड़ सकते, कब तो खा सकते हैं। कोला खतरनाक है, सब एग्री करते हैं इस बात पे कि डेंजरस है सोडा या कोला पीना ज़्यादा से ज़्यादा। केक, कैंडीज, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे जिस्म में उन सारी डिजीज़ का रिस्क इंक्रीज़ करती है जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड पे मेंशन किया। आर्टिफिशियल फ्रूट जूस जो होते हैं, मैं नेचुरल फ्रूट जूस की बात नहीं कर रहा, वो भी रिस्क इंक्रीज़ करते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ का। इसी तरह वाइट ब्रेड जो है वो डेंजरस हो सकती है, जैम्स, जेलीज, चिप्स, केक्स, कुकीज़, एनीथिंग जिसमें सिंथेटिक शुगर यूज हो रही है, ये याद रखने की बात है, दैट कुड बी रियली डेंजरस फॉर अस, दैट्स वेरी। ओ यस, एग्जैक्टली, बाय द वे डोनट्स की, सॉरी, डोनट की स्पेलिंग शुड बी DOUGHNETS, राइट, एनीवे, ओके, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट का हमने ये अंडरस्टूड कर लिया के कार्बोहाइड्रेट फ्यूल हमारी एनर्जी के लिए मस्ट हैं, ये बात सबको समझ में आ गई। और कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होते हैं, एक डेंजरस वाले हैं और एक अच्छे वाले, राइट। खतरनाक वाले वो हैं जिसमें सिंथेटिक शुगर यूज हो रही है। प्रोटीन्स का क्या फंक्शन है, अब हम दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। प्रोटीन बेसिकली हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। वी कैन नॉट ग्रो अनलेस वी हैव प्रोटीन इन अवर डाइट्स। हमारी हड्डियाँ, हमारी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, हमारे मसल्स इंक्रीज नहीं होंगे अनलेस वी हैव प्रोटीन इन अवर फूड। इसी तरह अगर हमें कोई चोट आती है, हमें कोई ज़ख्म लग जाता है, इट कैन नॉट हील अनलेस वी आर हैविंग सफिशेंट कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन अवर डाइट। तो प्रोटीन का बेसिकली फंक्शन है हमारी ग्रोथ और रिपेयर। प्रोटीन्स भी कई तरह के होते हैं, मैंने आपको दोबारा याद दिलाता चलूँ, कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, मैंने बताया था, फाइबर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल होता है। प्रोटीन्स भी तीन तरह के होते हैं, ड्राई बीन्स और नट्स, फिश एंड सी फूड, और थर्ड जो है उसमें पोल्ट्री या मीट आ जाता है जिसको आप गोश्त कहते हैं। आपकी दालों में, आपके मटन में भी प्रोटीन होता है, ये मत समझिए कि प्रोटीन सिर्फ गोश्त में होता है, नहीं। हाँ, प्रोटीन का जो 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 क्वांटिटी होती है वो दाल और मटर वगैरह में, बीन्स में कम होती है एज कम्पेयर टू मीट। तो ये बेसिकली प्रोटीन जो है इन इन चीज़ों में पाया जाता है। रेड मीट वर्सेस वाइट मीट, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। मीट भी दो तरह का होता है, एक वाइट और एक रेड, राइट। आप देख सकते हैं कि रेड मीट में जो है वो मतलब कितना ज़्यादा रेडनेस है, वो बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं, वो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है रेड मीट में, जिसकी वजह से रेड हो जाता है। आई वुड लाइक टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन ऑफ इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मौला फरमाते हैं कि गाय के दूध में शिफा है और उसके गोश्त में बीमारी है, लेकिन ये नहीं फरमाया कि नहीं खाओ, लेकिन बता दिया रिगार्डलेस कि ये हदीस कितनी ऑथेंटिक है, 300-400 साल से किताबों में चली आ रही है, या हो सकता है उससे भी पहले से, लेकिन मेडिकली ये बात बिल्कुल सही साबित हो चुकी है इस वक्त कि जो काऊ का या जो बड़े का गोश्त जिसे आप कहते हैं वो बहुत डेंजरस है। और वो क्यों डेंजरस है हम उसको आगे देखेंगे, इसलिए डेंजरस है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च, वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, दीज आर वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल अथॉरिटीज ऑन कैंसर रिसर्च इन द वर्ल्ड, एंड ऑल ऑफ दीज थ्री अथॉरिटीज हैव वेरी कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट के रेड मीट की कंजम्पशन जो है वो इन प्रॉब्लम्स को एग्रेवेट करती है, उनका रिस्क बढ़ाती है। नंबर वन, प्रोस्टेट कैंसर मर्दों में, यूटेराइन कैंसर खवातीन में, स्टमक कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये तो सबको मालूम है ना, बड़े का गोश्त बना किया जाता है हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर वालों को, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए, सबको मालूम होगी मेरे ख्याल में। ईसोफेगस जो हमारी गजाई नाली होती है, इसके कैंसर का रिस्क भी इंक्रीज करती है, डायबिटीज़ और लंग कैंसर को भी। जी हाँ, ये है रेड मीट। इसको आप सिगरेट की तरह खतरनाक मत समझिए, उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन देयर इज अ लिंक बिटवीन ऑल दीज डिजीजेस एंड द कंजम्पशन ऑफ रेड मीट। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हमारी कम्युनिटी में आप ओवरऑल सबकी बात कीजिए, तो कैंसर, गॉल ब्लैडर डिजीज, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, इसका ताल्लुक सिर्फ स्ट्रेस से नहीं है, इसका ताल्लुक डाइट से भी बहुत ज़्यादा है। ये हमें मालूम नहीं है एक्चुअली कि हम जो रोज़ाना खा रहे हैं ये किस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडीज़ में एक्यूमुलेट हो रहा है, और इवेंचुअली उस वक्त पता चलता है जब ऑलरेडी जो है वो नैया पार लग चुकी होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें मालूम हो कि जो हम खा रहे हैं उसके क्या क्या नुकसान हैं। अच्छा, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की तरह हम बात करते हैं कि कौन सा मीट अच्छा है खाना चाहिए और कौन सा नहीं। देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि दरिंदे जो हैं वो मीट खाते हैं, और जो जो चरिंदे हैं, पीस लविंग एनिमल्स, वो मीट नहीं खाते। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है और इंसान को दोनों चीज़ें कंज्यूम करने वाला बनाया है। अब ये इंसान के ऊपर है कि वो सिर्फ मीट या ज़्यादा मीट खा के दरिंदा बन जाए और हर वक्त जंगो जदल पर जो है वो तैयार रहे कि मुझे आज फलां को फतह कर लेना है, फलां से लड़ लेना है, या वो दोनों का एक आइडियल बैलेंस रखे वेजिटेबल्स और मीट के दरमियान, और मीट भी अच्छा वाला खाए, खतरनाक वाला मीट कम खाए या बिल्कुल ना खाए। व्हाट टू ईट, मीट में वाइट मीट यानी चिकन और फिश खाइए, जितना खा सकते हैं खाइए, कोई इशू नहीं। अगर कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़रूरी नहीं कि आप हर महीने गाय के कबाब ही बनाइए, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं आएगा, लेकिन आपकी हेल्थ इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक सेफ रहेगी। बिग फिश, प्रॉन्स, चिकन जो है ये वाइट मीट की एग्जाम्पल्स हैं। अब जो बड़े लोग हैं, जो मेरी उम्र के लोग हैं, यंग्स की बात नहीं कर रहा, वो एग वाइट अगर खाएं तो बहुत अच्छा है। एग योक को निकाल दी, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर एग वाइट आप खा रहे हैं तो उससे भी आपको एक्सेलेंट प्रोटीन सोर्स मिल रही है। एग्जैक्टली, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन चूंकि हम इस वक्त प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने तस्करा कर दिया। और कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप जैसे बड़े के गोश्त से कंपेयर करें प्रॉन को, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिस्क, तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है, अगर किसी साहब को प्रॉन पसंद नहीं है, मतलब नहीं कि आप प्रॉन ही खाइए, प्रॉन पसंद है तो वो खा सकते हैं, इसमें इतना रिस्क नहीं है जितना गाय के गोश्त में रिस्क है, ये मतलब है इसका। बीन्स और पल्सेस, आपको पता है बीन्स क्या होते हैं, पल्सेस दालों को कहते हैं, बीन्स जो है जितनी फलियाँ हैं, मटर हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें भी प्रोटीन्स होते हैं। इसके मिल्क, योगर्ट, योगर्ट हमने खाना है फैट फ्री, अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी एज ग्रुप की दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, हमने फैट फ्री योगर्ट खाना है, राइट, इसके मिल्क खाना है, पीना है, इसी तरह मार्जरीन जो है वो उसको हम बटर पे प्रीफर कर सकते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल मार्जरीन होता है खास तौर पे उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं. जो नहीं खाना रेड मीट, मैंने ऊपर ये भी लिखा है, अगर आप देखिए व्हाट नॉट टू ईट और मिनिमम कम से कम कंजम्पशन रखिए. अगर कोफ्ते पके हैं तो ज़रूरी नहीं कि चार कोफ्ते खाएं, महीने में एक दफ़ा एक कोफ्ता अगर खा लीजिए तो उससे जो नफ्स जो है वो काफ़ी हद तक आपको सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कोफ्ता खाने से. और बीफ वील और मटन जो है एग्जाम्पल्स में वो रेड मीट की एग्जाम्पल्स हैं. एग योक जो है बेसिकली वो नहीं खाना चाहिए हमारी उम्र के लोगों को जो ऑलरेडी अपनी ग्रोथ अचीव कर चुके हैं, आइडियली नहीं खाना चाहिए. या अगर खाएं तो फिर उनका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि वो डेली कोई हैवी एक्सरसाइज का काम कर रहे हैं, वो सीढ़ियां उतर चढ़ रहे हैं, उनकी आधे घंटे की वॉक है, यस तब वो जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं. 3.25% मिल्क हमारे लिए रिकमेंडेड नहीं. मुझे मालूम है चाय बहुत अच्छी और गाढ़ी बनती है उसकी, लेकिन इवन देन वो गाढ़ापन जो है वो फिर हमारे ब्लड को भी गाढ़ा करती है जाके, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं. इसी तरह फैटी योगर्ट जो है वो नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए. बटर जो है, टाइम हमारे पास वक्त कम है, आई थिंक वी हैव 20 मिनट्स 15 मिनट्स. यस ओके. सो फैट्स जो है वो बेसिकली, फैट्स भी कार्बोहाइड्रेट्स की तरह हमारी बॉडी का फ्यूल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. हम प्रोटीन को खत्म करके फैट्स पे यानी चिकनाई पे आ चुके हैं. तीसरे फूड ग्रुप की बात कर रहे हैं हम. फैट्स के क्या क्या फंक्शन हैं? हमारी स्किन को सॉफ्ट रखते हैं. अगर हम बाहर जाके सर्वाइव कर रहे हैं कनाडा की जो है -30 -40 डिग्री सेंटीग्रेड में, ये फैट की वजह से. ख्वातीन को सर्दी कम लगती है क्योंकि उनमें फैट ज़्यादा होता है, अल्लाह ताला ने फैट ज़्यादा रखा है. तो फैट बेसिकली एक्ट्स एज अ इंसुलेटर, एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर. फैट जितना ज़्यादा होगा आपको सर्दी कम लगेगी, लेकिन फैट जितना ज़्यादा होगा आपके ब्लड में उतना ज़्यादा आपको ऑफकोर्स प्रॉब्लम डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ेगा. इसी के साथ साथ वाइटामिन जो है हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं वो उस वक्त तक हम लोग उसको काम में नहीं ला सकते जब तक हमारी रजा में फैट ना हो. द बॉटम लाइन इज दिस, फैट इज एसेंशियल. मैं ये नहीं कहता फैट नहीं खाएं, फैट खाएं, कम खाएं, अच्छा वाला फैट खाएं. अच्छा वाला फैट कौन सा है? फैट्स, वी कैन डिवाइड फैट्स इनटू टू मेजर ग्रुप्स. नंबर वन गुड फैट्स, नंबर टू बैड फैट्स. गुड फैट्स जो खाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा खाने चाहिए. गुड फैट्स को हम दो मजीद कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं. इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ना टाइम है ना आपको इतना समझना चाहिए इसे. पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड. इसी के साथ साथ बैड फैट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स. अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के लेवल पर देखें कि इसमें ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, दैट कुड बी डेंजरस. तो याद क्या रखना है कि ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट जो है वो खतरनाक वाली फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं. सैचुरेटेड फैट, खतरनाक वाला फैट जो है वो कम लेना चाहिए. दिस डाउन एरो जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें कम लेना चाहिए. चीज़, मिल्क, बटर और बीफ. देखिए पुरानी वाली बातें रिपीट हो रही हैं जो मैंने पहले कहा कि बीफ जो है, रेड मीट जो है, वो ना सिर्फ प्रोटीन खतरनाक वाला है बल्कि उसमें फैट भी जो है वो ज़्यादा होता है, फैट कॉन्टेंट ज़्यादा होता है, राइट. इसी के साथ साथ चीज़ और जो फुल 3.25% मिल्क जो है वो उसमें बैड फैट ज़्यादा होता है. इसी के साथ साथ ट्रांस फैट जो हैं ये मार्जरीन्स हैं और जो स्टैंडर्ड वेजिटेबल ऑयल्स हैं और जो घी है उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, तो वो भी कम से कम खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. हेल्दी फैट्स जो हैं वो आपके उसकी जो एक्सेलेंट सोर्सेज हैं हेल्दी फैट्स की वो हैं जनाब आपकी वेजिटेबल्स, फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे आप कहते हैं ज़्यादा होता है, या फिश ऑयल जिसे आप कहते हैं. और इसी के साथ साथ ये जो सीड्स होते हैं जैसे कैशू सीड्स हैं, इनमें एक्सेलेंट होता है, पीनट्स हैं, इनमें एक्सेलेंट यानी क्वांटिटी मौजूद होती है अच्छे वाले फैट्स की. तो बैड फैट्स अगर हम ज़्यादा खाते हैं उसके क्या डेंजर्स हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? पूरी दुनिया में अगर आप इफ़ यू टेक एन एवरेज ऑफ अ सैम्पल साइज, एवरी 10 नॉर्मल डेथ्स, नॉर्मल डेथ को मैं कहता हूँ जो एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, राइट, जो एक बिस्तर मर्ग पे इंतकाल होता है, बीमारों के इंतकाल होता है, एवरी 6 ऑफ द 10 लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड इज बिकॉज ऑफ कंजप्शन ऑफ बैड फैट. यानी इसका मतलब ये है कि जो भी 10 लोग मरते हैं, एवरी 10 लोग मर रहे हैं बीमारियों से, उनमें 6 लोग जो हैं वो उनकी बीमारियों का कॉज ज़्यादा बैड फैट्स का खाना है. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. यानी अगर आप समझ लीजिए कि एवरी 60% जो डेथ्स हैं, एवरी आउट ऑफ एवरी 100% डेथ्स जो डिफरेंट बीमारियों से हो रही हैं, वो 60% डेथ्स जो है उनमें मेजर रोल है बैड फैट्स की कंजम्पशन का, जो कोलेस्ट्रॉल और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब जिस तरह हमने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बात की, कौन से फैट्स अच्छे हैं कौन से नहीं, कौन से खाने चाहिए कौन से नहीं खाने चाहिए। ओलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल जो है एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। आप ये मत समझिएगा मैं इसके लिए कमीशन पे काम कर रहा हूँ इन कंपनीज के लिए, लेकिन ये बहुत एक्सीलेंट सोर्सेज हैं आपके गुड फैट्स के लिए, ओमेगा फैटी एसिड जिसे आप कहते हैं। इसी तरह नट्स, आलमंड्स जो है, पीनट्स, कैश्यूज, लीन बीफ, अगर बीफ आपको खाना ही है वंस इन अ वाइल तो आप लीन बीफ का इंतखाब करें। लीन बीफ का मतलब ये जिसमें चर्बी जो है निकाली जा चुकी होती है। इसी के साथ साथ चिकन भी जो है वो लीन होना चाहिए। एग वाइट जो है वो एक्सीलेंट सोर्स है, अगेन ना सिर्फ प्रोटीन की बल्कि गुड फैट्स की भी। स्किम मिल्क एक्सीलेंट सोर्स है, स्किम मिल्क मतलब 0% या 1% आप कह सकते हैं, पार्शियली स्किम होता है। इसी के साथ साथ मार्जरीन, सारे अच्छे नहीं होते, मार्जरीन पे ज़रूरी है कि वो नॉन हाइड्रोजनेटेड मार्जरीन आप कंज्यूम करें, वो जो आप मार्जरीन खा रहे हैं वो नॉन हाइड्रोजनेटेड मार्जरीन हो। ये एक टिप थी जो आपको याद रखनी चाहिए। वनस्पति घी कोई भी नहीं खाता आजकल। स्टैंडर्ड वेजिटेबल ऑयल, वो उस पर नो कोलेस्ट्रॉल लिखा होता है लेकिन वो एक सेलिंग गिमिक है, एंड बी वेयर ऑफ दैट। हर स्टैंडर्ड वेजिटेबल ऑयल जो है वो गुड नहीं होता। मैंने आपसे फिर कहा कि ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए, और बेहतर है कि ओलिव ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर या कॉर्न ऑयल यूज़ कीजिए। बर्गर्स, पिज़्ज़ास, फ्राइज, कुकीज़, लेट मी से मैं भी खाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं सिर्फ आपको परहेज का बता के चला जाऊँ, लेकिन मिनिमम कंजम्पशन इंपॉर्टेंट है। किसी मेहमान के गए उसने रखा है ज़ाहिर, आप ये तो नहीं कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन आप जो खुद से अगर हर हफ्ते कोई साहब या डेली जो है वो अपने वर्क पे फास्ट फूड खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस है। होल एग, रेगुलर चीज़, नॉर्मल मिल्क, नॉर्मल मिल्क भी जो है वो डेंजरस है फैट की वजह से, और बटर जो है वो डेंजरस है। अगर इस तरह कोई साहब मेरी उम्र के वो या मुझसे ज़्यादा जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो रोज़ाना अंडा खा रहे हैं पूरा सर्दी को निकाले बगैर, बहुत ज़्यादा डेंजरस है उनके लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसको हम जल्दी से बस आगे चलेंगे। ओलिव ऑयल अगर आप देखें, ओलिव ऑयल में भी थोड़ा सा बैड फैट है। ये ग्रीन जो बार है, ग्रीन पोर्शन जो है, ये इंडिकेट कर रहा है गुड फैट को, राइट, और जो येलो है वो इंडिकेट कर रहा है बैड फैट्स को। तो ओलिव ऑयल जो है आप उसमें देख सकते हैं कि ज़्यादा जो क्वांटिटी है वो है गुड फैट की, राइट। बटर में गुड फैट कम है, बैड फैट ज़्यादा है। आई होप कि एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। नट्स में ज़्यादा है गुड फैट, कम है बैड फैट। कैनोला ऑयल में ज़्यादा है गुड फैट, कम है बैड फैट। मार्जरीन में जो स्टैंडर्ड मार्जरीन है उसमें भी गुड फैट कम है और बैड फैट ज़्यादा है। वेजिटेबल ऑयल भी जो स्टैंडर्ड वेजिटेबल ऑयल है, अनलेस कि वो कनोला हो, अपना कॉर्न हो, सनफ्लावर हो, उसमें भी ज़्यादा है बैड फैट। कोकोनट ऑयल में भी गुड फैट ज़्यादा है, पाम ऑयल में भी बैड फैट ज़्यादा है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी एग्जाम्पल्स हैं जो आप जहन नशीन कर सकते हैं ऑयल्स के हवाले से जो हमारी डेली कंजम्पशन है। अच्छा, अब एक स्पेशली टू माई यूथ हुई सिटिंग हेयर, ये मैं आपको बताता हूँ कि इस स्लाइड से यू कैन अंडरस्टैंड के जो हम खाते हैं रोज़ाना उसमें कितनी पावर, उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। एक 5 pound स्पेगेटी जो आप खाते हैं या नूडल्स खाते हैं या पास्ता खाते हैं, इट इज़ सफिशेंट टू ब्रीव अ पॉट ऑफ कॉफ़ी, यानी वो कॉफ़ी मेकर जो चलाने के लिए होता है उसको चलाने के लिए इतनी एनर्जी मिल जाती है स्पेगेटी को आप खाने से, यानी वो आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी दे रहा है। एक चेरी चीज़ केक जब पेस्ट्री आपने खाई एक पीस, उसमें इतनी पावर है कि वो 1.5 घंटे तक 60 watt का बल्ब जला सकता है। आपके बॉडी को इतनी एनर्जी मिल रही है। इसी के साथ साथ ये जो बिग मैक्स हैं मैकडोनल्ड वाला, ये देखिए, इसमें इतनी पावर है, इसमें इतनी एनर्जी आपको दे रहा है कैलोरीज ये, कि ये उस एनर्जी से आप एक कार को 88 miles तक ड्राइव कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप बड़े खुश हो रहे हैं यार इसमें बड़ी जान है, इसमें बड़ी ताकत है, नॉट एट ऑल, इसका निगेटिव इम्पैक्ट है। ये सारी कैलोरीज जो आपने खा ली और उसके बाद आप गाड़ी खींच के नहीं ले जा रहे, अगर वो पूरी एक आपने मैकडोनल्ड का बर्गर खाया और आप पूरी एक गाड़ी खींच के 1.5 घंटे तक नहीं लेकर गए अपने साथ बांध के, तो वो सारी कैलोरीज स्टोर हो जाएंगी और इवेंचुअली आपको मोटा करेंगे। वो जो कैलोरीज आप ले रहे हो उसको खर्च भी करना है, राइट, उसको एक्सपेंड भी करना है, उसको बर्न भी करें, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने, उसको धुआं बना के निकालें, तो बाहर आप सिर्फ खाए जा रहे हैं निकाल नहीं रहे बाहर। नतीजा क्या होता है कि फिर वो हमारी जो है वो वज़न जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है और हमारी शरियानों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है ब्लड वेसल्स में। अब अगर आप डाइट प्लेट को लीजिए, ये एक हेल्थ टिप है, एक स्टैंडर्ड डाइट प्लेट बताई गई है इसमें कि रोज़ाना आप की जो प्लेट है आइडियली वो कैसी होनी चाहिए, उसमें कम से कम एक फ्रूट हो, एक से दो फ्रूट्स हो, केला हो, सेब हो, व्हाटएवर जो आपको पसंद हो, आम के सीज़न में आम हो, एक ग्लास स्किम मिल्क का बड़ों के लिए ज़रूरी है और नॉर्मल मिल्क का छोटों के लिए ज़रूरी है डेली कम से कम। ये मैं एवरी मील की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा, ये एवरी मील की बात कर रहा हूँ, मैं आइडियल डाइट की बात कर रहा हूँ। वेजिटेबल का एक हिस्सा होना चाहिए और प्रोटीन्स यानी फिश है या दाल है या मटर है, अगर आप रोज़ाना फिश ज़ाहिर कंज्यूम नहीं कर सकते, या चिकन है, पोल्ट्री है, उसको आप कंज्यूम करना चाहिए। ये एक आइडियल प्लेट बताई गई है, वर्ल्ड इंटरनेशनल जो फेडरेशन हैं, अथॉरिटीज़ हैं डाइट पे, उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि एक आइडियल आदमी जो बीमारियों से महफूज रहना चाहता है उसके लिए ऐसा होना चाहिए एवरी मील। अच्छा, अब रोज़ाना जो मैं दिन में खाना खा रहा हूँ उसमें कितने परसेंट फैट से आना चाहिए, कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए, कितने परसेंट प्रोटीन से आना चाहिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50% कार्बोहाइड्रेट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, नॉट बैड, यानी गुड कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये नहीं कि आप पूरा दिन सिर्फ गुड कार्बोहाइड्रेट्स ही खा जा रहे हैं, फैट्स नहीं ले रहे हैं, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। फैट्स 30% जो है फैट्स होने चाहिए, मैं बता चुका हूँ कि अच्छे फैट्स कौन कौन से हैं। प्रोटीन्स 20% जो है वो प्रोटीन होने चाहिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपकी बॉडी की रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, नेवर स्किप अ ब्रेकफास्ट। अगर आप में से कोई ब्रेकफास्ट स्किप करता है, ये मेरी रिक्वेस्ट है इमाम ज़माना अलैहि सलाम के ज़हूर, के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। आप हंसेंगे मेरी इस बात पर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ब्रेकफास्ट नॉर्थ अमेरिका में सिर्फ 17% लोग ब्रेकफास्ट, मतलब सिर्फ तकरीबन 17% लोग जो है ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, जो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप करने से होता क्या है, हमारी याद करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, हमारी थिंक और कंसंट्रेट करने की सलाहियत कम हो जाती है, हमारी इंक्रीज्ड जो हमारे जो एनजाइटी जो हार्मोन्स पैदा करते हैं ब्रेन में, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस होती है। जो बंदा ब्रेकफास्ट नहीं करता वो हाई रिस्क पर है टेंशन और स्ट्रेस का, ये याद रखिएगा। ओबेसिटी, जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते उनमें हाई वेट होने के चांसेस ज़्यादा, ओवर वेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्री मैच्योर डेथ, अर्ली डेथ होने के चांसेस उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते। यही वजह है कि इस्लाम जो, जिसको आप रिलीजन ऑफ नेचर कहते हैं, जो दीन फितरत है, उसने सहरी को मस्ट कर दिया है आपके लिए, सुन्नत मौकदा है, अगर कोई मजबूरी आप नहीं करवा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तलकीन है कि सहरी करें आप, इसी वजह से कि ब्रेकफास्ट के बगैर इंसान का पूरा दिन जो है वो तबाह हो सकता है और वो बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ों के रिस्क पर आ जाता है। नाश्ता आइडियाज़, दोबारा एडल्ट्स जो हैं वो सीरियल्स एक्सीलेंट आइडिया है नाश्ते के लिए। एग वाइट, स्किम मिल्क, होल व्हीट ब्रेड, रोटी, बनाना, एनी वेजिटेबल फ्रूट्स जो हैं ये नाश्ते में, अगर आप इनमें से सारी चीज़ें शामिल करना ज़रूरी नहीं, दो या तीन चीज़ें भी अगर आप कर लें तो बहुत है, ख़ासतौर पर सीरियल्स और मिल्क, स्किम मिल्क। इसी तरह बच्चों के लिए ऑमलेट या एग बहुत ज़रूरी है, योगर्ट, मिल्क, बनाना, होल व्हीट ब्रेड जो है, या रोटी भी अगर आप खा रहे हैं नाश्ते में, वेल एंड गुड। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कौन कौन सी खाएँ, ये हम हेल्थ टिप्स की बात करें, वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू फिनिश अवर प्रेजेंटेशन नाउ। टिप नंबर 4 कौन सी है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स कौन सी खाए जाएं। एक आसान सी टेक्निक याद रखिए, आपने दिन में वो चीज़ें, फल या वेजिटेबल्स खाने जिनके डिफरेंट कलर्स हों, बहुत आसान सी टिप है ये। आप देख रहे हैं कि अगर आपने सुबह फ़र्ज़ कीजिए कि एक एप्पल खाया रेड कलर का, राइट, अब आप दोपहर में येलो बनाना खा सकते हैं, आप ऑरेंज टोमेटो खा सकते हैं 3 o'clock पे या 4 बजे, रात में आप किसी और कलर खा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, कि अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि मैंने आज कौन सी वेजिटेबल या फ्रूट खाना है, तो डिफरेंट कलर यूज़ कीजिए। कहने का मकसद ये कि दिन में अगर आप ये समझ लें कि मैंने 3 banana 3 times खा लिए तो मेरी फ्रूट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, नहीं, डिफरेंट कलर्स, 3 या 4 चीज़ें आपको डिफरेंट खानी है। फ्रूट नहीं खा सकते 3-4 डिफरेंट कलर्स के, वेजिटेबल्स खा लीजिए, कच्ची सैलड खा लीजिए, कोकम्बर खा लीजिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं, कैरेट्स खा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ईट लेस बट मोर ऑफ्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आप बजाय 3 बड़े खाने खाने के बजाय 4 या 5 छोटे छोटे खाने खाइए। नाश्ता आपने अच्छा किया, उसके बाद आपने 12 या 1 बजे जो आप कहते हैं कि जो स्नैक लंच का होता है, उसमें आपने सैलड खा ली या कोई छोटी मोटी चीज़ खा ली, स्नैक खा लिया, पूरा पेट भर के नहीं खाया। फिर 4 या 5 बजे आपने कोई एक और छोटा मील लिया, और फिर रात में भी छोटा डिनर करके सो गए। इससे ना सिर्फ आप हार्ट डिजीज से महफूज रहेंगे बल्कि आपका वजन भी बहुत कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, वाटर बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी का 60% वाटर है, हमारी बोन्स का 20% वाटर है, और वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे किडनी के फंक्शंस के लिए, इसीलिए ज़्यादा पानी पीना रिकमेंड किया जाता है। मैं बहुत जल्दी मैं इसको स्लाइड को कवर करूँगा। कम अज़ कम 8 ग्लासेस वाटर आपने पीना है सबने, बच्चों ने कम अज़ कम 5 to 6 ग्लासेस, 6 ग्लासेस बच्चों ने और 8 ग्लासेस एडल्ट ने 24 आवर्स में, बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पानी पीना जो है वो आपको एक्टिव रखेगा, आपके वज़न को कंट्रोल में रखेगा, और जो सारी जो वेस्ट मटीरियल है उसको जल्दी जल्दी फ्लश आउट करता रहेगा। फूड गाइड पायरामिड की बात कीजिए, ये वही बात है जो मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ कि जो इसके ये जो एराम मिस्र टाइप की जो मैंने चीज़ बनाई है इसमें इजिप्शियन पायरामिड की तरह की, इसकी बेस पे वो चीज़ें जो आपने ज़्यादा खानी है, ब्रेड सीरियल राइस पास्ता, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें आपको खानी है। डेली कम से कम 5 या 6 सर्विंग्स आप इसकी खा सकते हैं। इसी के साथ साथ वेजिटेबल ग्रुप की अगर आप बात कीजिए, वो आपने इससे कम खाना है लेकिन ज़्यादा खाना है। वेजिटेबल और फ्रूट जो है उसकी कम से कम आपको डेली 3 to 4 सर्विंग्स खानी है। इसी के साथ साथ मिल्क योगर्ट चीज़ जो है उसकी 2 to 3 सर्विंग्स आपको खानी चाहिए। सबसे कम आपको खाना है स्वीट्स ऑयल्स फैट्स, यू हैव टू यूज़ ऑल दोज थिंग्स वेरी स्पेरिंगली। ये है बेसिकली आपका फूड पैरामिड। फाइनल स्लाइड, कुरान शरीफ में है कि ईट ऑफ द गुड एंड होलसम थिंग्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर योर सस्टेनेंस बट इंडल्ज इन नो एक्सेस देयरिन। साफ साफ अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान मजीद में कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नहीं खाना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, होलसम चीज़ें, यानी कम खाइए लेकिन सारी सब फूड ग्रुप में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें लीजिए, आपकी फूड जो है कम्प्लीट होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी आदम जो हैं वो कोई चीज़ ज़्यादा वर्स नहीं बढ़ते, ख़राब नहीं बढ़ते मास्वाय देयर स्टमक के, यानी सबसे बदतरीन चीज़ जो है अगर इंसान कोई चीज़ जमा करे उसमें वो उसका मेज़ा है, उसका स्टमक है। इसी के साथ साथ अगेन इरशाद होता है कि स्टमक जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है, जो अब साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, और फास्टिंग इज़ द प्राइम मेडिसिन, रोज़ा जो है वो बीमारियों का इलाज है। इसी के साथ साथ इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि Whoever eats less, their thought will be more purified. यानी आपका रूहानी स्पिरिचुअलिटी बहुत इंप्रूव होगी, यही वजह है कि रोज़े की इतनी इंपॉर्टेंस है। और इसी के साथ साथ इमाम फिर फरमाते हैं कि स्टमक ट्रांसग्रेसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर ईटिंग, जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं उनका मैदा जो है वो डिटोरिएट कर लेता है, और अल्लाह ताला के नज़दीक और उसके बंदे के नज़दीक सबसे यानी करीब लाने का बहुत बड़ा ज़रिया है खाली पेट होना इंसान का, और दूर करने का बहुत बड़ा जरिया जब उसका पेट पूरा भरा हुआ हो, क्योंकि सारी शैवाल जो है फिर उस पर गालिब आएंगे जिसका पेट भरा हुआ होगा। तो आई जस्ट नीड टू स्किप दिस, कुड यू जस्ट ब्रिंग इट फॉरवर्ड, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। फाइनली बहुत फेमस सेइंग फर्स्ट इमाम की कि डोंट मेक योर स्टमक अ ग्रेवयार्ड ऑफ एनिमल्स, अपने मेदे को जानवरों का कब्रस्तान मत बनाओ। मौला फिर देखें गोश्त की बात करें कि वो जो मरे हुए एनिमल्स हैं वो आपके पेट उसका कब्रस्तान नहीं होना चाहिए। द थिंग्स कॉज अल्लाह हैट्रेड, अल्लाह इमाम फरमाते हैं सिक्स इमाम के, जिसने मतलब जो अल्लाह ताला की नफरत का जो बाइस हैं चीज़ें वो हैं बग़ैर नींद के सोना, बग़ैर भूख के खाना, और बग़ैर वजह के हंसना। और इसी के साथ साथ डू नॉट ईट दैट विच यू हैव नो एपिटाइट, जब तक भूख ना लगे हर किस्म मत खाएँ। और ये चीज़ जो है ये इंसान के जहन को कमज़ोर करती है, उसमें स्टूपिडिटी या इडियोसी लाती है। और इसी के साथ साथ जब आप खाइए तो सिर्फ वो खाइए जो हलाल हो। That's all for now. We are almost finished now. It's time for iftar, for namaz actually.
एक दो क्वेश्चन
ले लें। जी जी। बिस्मिल्लाह। जी जी।
यार क्वेश्चन। What is something must actually gain more weight and get more healthy, like our skin, right? So, what is something needs to gain more
weight? Pardon me, I could not understand.
What is something needs to gain more weight? Put on more weight.
Okay. Okay. Well, it depends. It actually depends on number of factors. Like, for example, how old are you? Your genetic makeup. For example, if your parents are thin, chances are that there are very minimum chances for you to grow weight, right? However, you have to, if you are in a normal age group, like if you are below 22 or 24, right, you could always practice those things which I have just mentioned, like eating whole skim milk, whole milk, not skim milk. At least, you know, eating an egg, whole egg, eating white meat like poultry and fish and all that. The bottom line is this: you have to consume at least 60 to 70% per percent of fats and proteins if you need to gain weight in normal in your circumstances. Sorry? 60 to 70% protein plus fats combined. While in other normal circumstances, it has to come from like 50% from carbohydrates, 30% from fats, and 20% from proteins. लेकिन आप जो बता रहे हैं वो वेट गेन करने के लिए जरूरी है कि आप फैट और प्रोटीन को बढ़ा दें अपनी डाइट में.
जज़ाकअल्लाह. Any other quick question? We still have two couple of minutes. If you have any other question,
Yes, please go ahead.
So, as a Muslim, हम believe करते हैं कि हमारा जो मौत का time है वो मुकर्रर है.
जी जी.
अब बीमारी का और मौत का बहुत गहरा था. मतलब gradually से इंसान पैदा होता है, इंसान मरता है.
ठीक ठीक. जी जी.
अभी जो diet है, ये हमारी उस time frame पर क्या effect डालती है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किया?
बेशक, बिल्कुल सही. बहुत बहुत वेरी नाइस क्वेश्चन. आपके इख्तियार में मौत का टाइम नहीं है, फैक्ट है. एज अ मुस्लिम हम लोगों का बिल्कुल बिलीव है, लेकिन आपके इख्तियार में अल्लाह ताला ने यह दिया है कि किस तरह जाएं आप, किस तरह अल्लाह ताला के पास जाना है. एक्सीडेंट और उसकी बात नहीं कर रहा, मैं शहादत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जाना है तमीज़ से जाना है, अच्छी तरह जाना है, खुदा ना खास्ता बेड रिडन होकर जाना है, स्ट्रोक होकर जाना है, फालिज होकर जाना है, हार्ट डिजीज़ के साथ जाना है, खुदा ना खास्ता एड़ियाँ रगड़ के जाना है, मोहताज होकर जाना है, या नॉर्मल तरीके से अच्छी तरीके से चल के जाना है. ये इंसान के वो है उसकी मौत. एज अ मुसलमान तो ज़ाहिर है हम लोग बिलीव करते हैं कि एक दिन मुअय्यन है, लेकिन वो जो मीर तक़ी मीर ने कहा था कि नींद क्यों रात भर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, या गालिब ने कहा था शायद. तो बेसिकली हमें मौत का दिन मुअय्यन है, लेकिन हम तकलीफ़ से जाते हैं अल्लाह ताला के पास या नॉर्मल तरीके से आते हैं, हमारे हाथ में. उन बीमारियों को प्रिवेंट करना यकीनन हमारे हाथ में है. यह फिर वो एक अलहदा इशू है, डिबेट है कि वो बीमारियां गुनाह झड़ने का जरिया है, वो है ये, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई इंसान सिर्फ इसलिए बीमार होना चाहे कि मेरे गुनाह झड़ जाएंगे, खुदा ना खास्ता. तो ये
जी जी बच्चों में सुनते हैं कि ये पिक है, ये बहुत ज़्यादा हराम है, उसका नाम लेना भी हराम है.
जी जी.
उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उसको इस कदर मतलब जो है नजीस बनाती है इंसान?
आप मेडिकल पॉइंट ऑफ देखिए, उसका रिलीजियस क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट है. वो एक वो उसमें शर्म होया नहीं है, बिगड़ती है, वो गंदगी खाता है, ठीक है. लेकिन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेडिकल हवाले से जो है वो पिग में बेसिकली तकरीबन 7 या 8 किस्म के बैक्टीरिया फाउंड होते हैं. वो उनका क्योंकि गंदगी में रहता है, गलाजत खाता है, तो उनका होस्ट है पिग, ख़ास तौर पर पिग जो है उनका होस्ट बन जाता है. और इसी के साथ साथ जो फैट है पिग में, वो उसका कॉन्टेंट गोट और शीप से ज़्यादा है. तो ये भी एक वजह है कि मतलब वो एक बैड फैट जो है पिग में ज़्यादा है, मेडिकली आप ये कह सकते हैं. इसी के साथ साथ लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये कि 7 to 8 डिजीजेस का कैरियर है पिग जो है, उसके उसके गोश्त में ट्रांसफ़र हो जाती हैं बहुत आराम से. बाकी रिलीजियस हवाले से आपको पता है कि वो एक उसकी एक बेगैरती या शर्म हो या उसमें नहीं होती, तो उस वजह से जो है वो असरात जो है इंसान की जो रूह पर हैं उसको असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए उसको हराम किया गया है. जी जी. मौलाना साहब की तरफ पर्ची तो नहीं देंगे ऐसी पूछ रहे हैं. ओके, श्योर, वेरी गुड क्वेश्चन. I want to ask if almonds are good for heart. Of course, they are very good for heart. And if yes, how much is in a day? It depends on your age, right? It depends on your weight. Like if, I don't know what the whose question was that. Agar ye lady's question, right? So if you are an adult lady, I'm assuming you're an adult lady, at least like 3 to 4 almonds, 2 to 3 servings a day. Like for example, easy isko aap words mein aise kar lein ki at least aap din mein agar 8 to 10 almonds kha rahi hain, और उसके साथ 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 आपने हेल्दी लाइफस्टाइल भी रखा हुआ है, तो आपके लिए अच्छा है. एज अ होल आलमंड्स आर ऑलवेज गुड. उसमें फैट भी अच्छा होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा वाला होता है, उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स भी होते हैं. तो आप मॉडरेशन में आलमंड्स कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई रिकमेंडेड क्वान्टिटी नहीं है कि आपने रोज़ाना जो है वो 12 खाने या 20 खाने हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. दैट्स इट. पीनट्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे आई जस्ट मेंशन कि उसमें जो है वो अच्छे वाले प्रोटीन्स और फैट जो है मौजूद होते हैं. फैट ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, फैट उसमें ज़्यादा होता है बिल्कुल, लेकिन अच्छा वाला फैट. मैंने यही आपको बताया कि मिथ है ये कि उसमें वो चिकना हो जाता है हाथ, लेकिन जो नमक और जो जो मिर्चों वाले पीनट्स होते हैं वो नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर वो एक अलग टॉपिक है. आज हमने बिल्कुल कवर नहीं किया वो 40-50 मिनट्स में, उनको हम नहीं कर सकते. बहुत टॉपिक्स हैं, स्लीप है, एक्सरसाइज है, हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको हम नहीं कर सकते अभी इतने कम वक्त में. तो आप मुझे ऐसे नहीं छोड़े इसका मतलब. चले, जजाक अल्लाह बहुत शुक्रिया।